अब आप धारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन, आदि देव प्रजा पिता श्री बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, शिव बाबा पधारे ओ ओ। सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, शिव बाबा पधारे ओ ओ। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, आप जैसी धरती पे आई, एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ।
ओम शांति, ओम शांति। सत गुरुवार की गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा ने पढ़ाई पर बहुत जोर दिया है, क्योंकि ये पढ़ाई ही कमाई है। इसको बाबा कहते सोर्स ऑफ इनकम। सच्ची कमाई इस पढ़ाई से ही है, और यही पढ़ाई फिर सफाई भी है, क्योंकि आत्मा रूपी वस्त्र साफ होता है। बाबा की मुरली में कई बार ऐसी बातें होती है जो एकदम ऐसे छू जाती है आत्मा को, और परिवर्तन हो जाता है। कई बार बाबा की बहुत स्ट्रिक्ट मुरली चलती है, सावधानी की मुरली चलती है, तो हम कई बार कहते हैं ना, आज तो जैसे धर्मराज की मुरली थी, क्योंकि बाबा बच्चों को सावधान करते हैं, तो वो भी मुरली के द्वारा ही होता है। तो सावधानी देना माना जैसे धोबी कपड़े धोता है, परंतु बहुत मैले कपड़े होते हैं तो उसको सटके से मारता है, सटका लगाता है जोर से, ताकि उसकी मैल निकल जाए। नहीं तो ऐसे जल्दी मैल निकलती नहीं है, तो उसको सटका लगाना पड़ता है। तो बाबा की मुरली भी कई बार ऐसे होती है, सटके वाली, माना इतनी सावधानी की मुरली होती है कि बच्चे अगर ये नहीं किया तो कितनी सजाएं खानी पड़ेगी। तो इसलिए ये पढ़ाई कमाई तो है ही, कि जितने ज्ञान रत्न यहाँ जमा करेंगे ये अविनाशी रत्न बन जाएंगे भविष्य 21 जन्मों के लिए। लेकिन इसे सफाई भी है, और सफाई के साथ साथ आत्मा की जब सफाई हो जाती है तो चढ़ाई हो जाती है। तो आत्मा की चढ़ाई भी है, और हमारी चढ़ाई से दुनिया की चढ़ाई हो जाती है। चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला। तो हमारी चढ़ती कला होती है, तो हमारी चढ़ती कला से दुनिया का भला हो जाता है, दुनिया ही बदल जाती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं खूब कमाई करो, यही कमाई साथ चलेगी, क्योंकि कोई शरीर का तो भरोसा ही नहीं है, कभी भी अंतिम घड़ी आ जाए। परंतु जो कमाई की हुई है आत्मा ने, वही आत्मा के साथ जाएगी। यही कहते हैं ना, जब हम किसी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तो यही कहते हैं कि इस आत्मा ने बहुत कमाई की, और ये कमाई अपने साथ ले गई। तो कभी भी अंतिम घड़ी आ सकती है, तो जितनी कमाई की है वही चलेगी, बाकी वो जो सांसारिक कमाई है वो तो यही रह जाएगी। लेकिन बाबा कहते हैं कई बच्चे ये समझते नहीं है, और उस कमाई के पीछे ही लगे रहते हैं। हाँ, वो कमाई, तो ये कमाई क्यों नहीं समझते? क्योंकि वो कमाई तो दिखाई देती है ना, पर ये कमाई दिखाई नहीं देती है। इस कमाई से हम एवर हेल्दी बनते हैं, एवर वेल्दी बाबा कहते हैं। उस कमाई में तो कोई भरोसा ही नहीं कि कोई हेल्दी बनाएगी वो कमाई, या अब हमको एवर वेल्दी भी बनाएगी। लेकिन ये कमाई हेल्दी वेल्दी सब बनाती है, लेकिन इस पर इतना ध्यान नहीं देते। तो आज बाबा ने विशेष इसी बात पर बहुत गहराई से समझाया है। सुनते हैं बाबा के माँ वाक्य। आज 12/3/2026 है। मीठे बच्चे, ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, कमाई का ये साधन है पढ़ाई। इससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो, 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। हाँ, वो कमाई तो झूठी कमाई है एक जन्म के लिए, पर ये कमाई जो इस पढ़ाई से है वो 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। प्रश्न है, बाप जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, मुरली में मीठी मीठी बातें आती है बाबा की, वो धारण कब होगी? कई बार तो सुन लेते बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धारणा होती नहीं है, तो कब होगी वो धारणा? बाबा ने आज उसका कारण बताया क्यों धारणा नहीं होती और कब होगी धारणा। तो बाप जो मीठी मीठी बातें सुनाते वो धारण कब होगी? क्या नहीं चाहिए तब धारण होगी? उत्तर है, जब बुद्धि पर मत व मन मत का प्रभाव नहीं होगा। कई सुनी सुनाई बातें इसकी उसकी उसकी सुनते रहते हैं और हमारे मन पर उनका प्रभाव पड़ जाता है, फिर हमारी अवस्था भी नीचे ऊपर हो जाती है, तो फिर इस पढ़ाई का प्रभाव कैसे पड़ेगा? तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाप जो मीठी मीठी बातें सुनाते वो धारण कब होगी? उत्तर, जब बुद्धि पर मत व मन मत का प्रभाव नहीं होगा। कब? कब तो हम अपनी मन मत ही चलाते रहते हर बात में, या औरों की मत चलाते हैं, बाबा जो कहते उस पर नहीं चलते हैं। तो जो बच्चे सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं उनकी बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। सारा दिन पर चिंतन, पर निंदा, पर ग्लानी, पर मत, ये पर हाँ बाबा कहते करते रहते झरमुई जगमुई, तो बाबा कहते बाबा की जो बातें वो धारण कैसे होगी? उनकी बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती, सिवाय ज्ञान के और कुछ भी कोई सुनाता है। आज बाबा ने सावधान किया, ज्ञान के सिवाय और कोई कुछ भी सुनाता है तो वो जैसे तुम्हारा दुश्मन है। बहुत कड़ा शब्द है ये, ज्ञान के सिवाय वो पर चिंतन, तुमको पता है ऐसे किया है, तुमको पता है ये हुआ है, अरे भाई हमें नहीं पता, क्या लेना देना, हमारा तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम सुनते हैं और फिर औरों को भी सुनाएंगे, तो क्योंकि वही बुद्धि में भूसा बैठा हुआ है बातें हैं, तो बाबा कहते जो सुनाता है वो दुश्मन है तुम्हारा, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है। तो बाबा कहते हैं वो कुछ तो वो जैसे तुम्हारा दुश्मन है। झूठी बातें सुनाने वाले बहुत है, कई बार वो बातें झूठी होती है, सच्ची भी नहीं होती है, लेकिन हम सुन करके वही सोचते रहते हैं, तो हमारी बुद्धि भी तो उसी अनुसार मलिन हो जाती है। झूठी बातें सुनाने वाले बहुत हैं, इसलिए बाबा क्या कहते हैं, हियर नो ईविल, सी नो ईविल, टॉक नो ईविल। तो मनुष्य से देवता बनने के लिए एक बाप की ही श्रीमत पर चलना है। गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं, इस धरती के तारे हैं। ओम शांति। इस गीत में जैसे कि अपनी महिमा करते हैं, हमारे तीरथ कौन से हैं? परमधाम हमारा तीरथ है, मधुबन हमारा तीरथ है ना, सूक्ष्म वतन भी तीरथ है, हमारे सेंटर्स तीरथ है। तो बाबा कहते इस गीत में जैसे कि अपनी महिमा करते हैं, ये हमारे तीरथ है। अपनी महिमा वास्तव में की नहीं जाती है, वैसे भी नहीं करते, परंतु हम तो करते हैं ना, ये तीरथ है हमारे सच्चे तीरथ। अब ये तो सब समझने की बातें हैं, जो भारतवासी बहुत समझदार थे अभी बेसमझ बने हैं। अब प्रश्न उठता है, बहुत समझदार थे भारतवासी अभी बेसमझ बने हैं, तो प्रश्न उठता है कि समझदार कौन थे, वो कौन थे, भारतवासी जो बहुत समझदार थे, ये कहां भी लिखा हुआ नहीं है। तुम हो गुप्त, कितनी वंडरफुल बातें हैं। एक तो बाप कहते हैं मेरे द्वारा ही बच्चे मुझे जान सकते हैं, मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, मैं अपनी पहचान खुद ही देता हूं। तो बाबा कहते हैं मेरे द्वारा ही बच्चे मुझे जान सकते हैं, फिर मेरे द्वारा सब कुछ जान जाते हैं। मुझे जानने से सब कुछ जान जाते हैं, रचयिता को जाना तो रचना को भी जान जाते हैं, फिर मेरे द्वारा सबको जान जाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो खेल है उनको समझ जाते हैं। बाबा को समझने से और सब जो रचना की बातें वो भी समझ जाते हैं, और कोई भी नहीं जानते हैं। और एक मुख्य भूल की है, कौन सी सबसे बड़ी भूल कर दी है, जो निराकार परम पिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो पहला नंबर शास्त्र गीता, जिनको श्रीमद् भगवत गीता कहते वही रॉन्ग हो गया। इसलिए पहले पहले तो सिद्ध करना है कि भगवान एक है, गीता का भगवान शिव है, ये भी समझाने से पहले ये सिद्ध करना है कि भगवान एक है। फिर पूछना है, भगवान का परिचय दिया, फिर पूछना है गीता का भगवान कौन। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है, अगर नया धर्म कहें, नया धर्म देवता तो अभी बाद में बनेंगे, अभी कौन सा धर्म है हमारा, देवता तो सत्युग में बनेंगे, अभी तो देवता नहीं है ना। तो बाबा कहते अगर नया धर्म कहें अभी, तो फिर कहेंगे कौन सा हमारा धर्म, ब्राह्मण। तो अभी कहेंगे तो कहेंगे ब्राह्मण धर्म हमारा नया धर्म है। पहले चोटी है ब्राह्मण, फिर देवताएं, तो ऊंच से ऊंच है ब्राह्मण धर्म, देवताओं से भी ऊंचा ब्राह्मण धर्म। जो ब्राह्मण ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा रचते हैं, किसको रचते हैं, ब्राह्मण को रचते हैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा, वही ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। तो मुख्य बात है भगवान सबका बाप है, सब आत्माओं का, सब धर्म वालों का बाप है भगवान, नई दुनिया का रचयिता है। जरूर नई दुनिया ही रचेंगे ना भगवान, कोई पुरानी दुनिया तो नहीं रचेंगे ना, नई दुनिया ही रचेंगे। नई दुनिया में नया भारत होता है, जन्म भी भारत में लिया है भगवान ने, जन्म भी भारत में लिया है। तो नई दुनिया में भी नया भारत होगा, तो भारत में भगवान जन्म लेते हैं, भारत को ही स्वर्ग बना रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। तुमको अपना बनाकर, शिव बाबा पहले हमको अपना बनाकर फिर पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने लिए। ब्रह्मा द्वारा हमें पढ़ाया, अपना बनाया, फिर हमको देवता बनाते हैं। पहले तो तुम शूद्र वर्ण के थे, फिर आए ब्राह्मण वर्ण में, फिर दैवी वर्ण में जाएंगे, पीछे वृद्धि होती रहती है। एक धर्म से फिर अनेक धर्म हो जाते हैं, तो जड़े हैं ब्राह्मण इस कल्प वृक्ष के, फिर तना है देवी देवता धर्म, सत्युग त्रेता युग। फिर बाबा कहते हैं एक धर्म से अनेक धर्म हो जाते हैं, टाल टालियां भी सब धर्मों की बन जाती है, हर एक धर्म से निकलती है, अलग अलग धर्म हो जाते हैं तो अनेक टालियां हो जाती है, अनेक टाल टालियां हो जाती है। तीन ट्यूब्स होते हैं ना, किसी ने प्रश्न किया हमसे तो ये तीन ट्यूब बाबा क्यों कहते हैं, तो ये तीन शाखाएं हैं, इस्लाम, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी। ये तीन मुख्य शाखाएं जो निकलती है, बाबा कहते हैं ये तीन ट्यूब्स है, मुख्य है फाउंडेशन, फिर तीन ट्यूब्स है मुख्य, धुर है आदि सनातन देवी देवता धर्म का, जो अभी सब राजयोग सीख रहे हैं, होवनहार देवताएं अभी राजयोग सीख रहे हैं ब्राह्मण के रूप में। देलवाड़ा मंदिर बड़ा अच्छा बना हुआ है, ये सही यादगार है बाबा कहते हैं तुम्हारा, बड़ा अच्छा बना हुआ है, उनमें सारी समझानी है। बच्चे यहाँ बैठे हैं, कल्प पहले भी तुमने राजयोग की तपस्या की थी, नीचे सब छोटे छोटे वो चबूतरे में योगी बैठे हैं, तो ये बाबा कहते कल्प पहले भी तुमने राजयोग की तपस्या की थी। जैसे क्राइस्ट का यादगार क्रिश्चियन देश में है, वैसे तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की है, आबू में तपस्या की है। हाँ, आबू राज नाम ये हो गया ना, माउंट आबू नहीं, आबू राज। वैसे तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की है, तब तुम्हारा भी यादगार यहाँ है आबू राज में। है बड़ा सहज, परंतु कोई भी जानते नहीं है। सन्यासी लोग तो कह देते हैं, जब हम उनको कहते हैं ना नीचे हम तपस्या कर रहे हैं ऊपर राजा ही पाएंगे, तो वो क्या कहते हैं, ये सब तुम्हारी कल्पना है, ये कोई इससे कोई राजा ही मिलने वाली नहीं है, कल्पना है तुम्हारी। जैसी जो कल्पना करे, फिर ऐसे ही कह देते हैं वो कि जैसी जो कल्पना करे। तुम्हारे लिए भी कहते हैं ये चित्र आदि सब तुमने कल्पना से बनाए हैं, ये सब कल्पना है तुम्हारी, जो भी तुमने चित्र बनाए। तो जब तक बाप को जाने कल्पना ही समझते हैं, इसीलिए सबसे पहले उनको बाप का परिचय दो, और बातें बाद में। बाप का परिचय दिया नहीं तो समझेंगे ये सब कल्पना है, कल्पना ही समझते हैं जब तक बाप का परिचय जाने। नॉलेजफुल तो एक बाप है ना, तो मुख्य है बाप का परिचय देना। वो बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, कल्प पहले भी दिया था, फिर 84 जन्म लेना पड़े, भारतवासियों के ही 84 जन्म होते हैं, फिर संगम युग पर बाप आकर राजधानी की स्थापना करते हैं। तो तुम बच्चों ने बाप द्वारा समझा है, जब अच्छी रीति समझे, ये ज्ञान इतना अच्छी रीति समझे, बुद्धि में बैठे, तब खुशी भी रहे, खुशी भी तब रहे जब ये ज्ञान अच्छी रीति बैठे। पर अच्छी रीति बैठेगा तब जब अच्छी रीति समझे, तब खुशी भी रहे। ये पढ़ाई बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है, पढ़ाई से ही मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं, लेकिन ये पढ़ाई मनुष्य से देवता बनने की है। प्राप्ति कितनी भारी है, इन जैसी प्राप्ति कोई करा न सके। वो जो प्राप्ति कराएंगे एक जन्म के लिए डॉक्टर इंजीनियर बैरिस्टर बनाएंगे, पर बाबा कहते हैं इस पढ़ाई जैसी कोई प्राप्ति हो न सके। ग्रंथ में गाया हुआ है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। परंतु मनुष्यों की बुद्धि चलती नहीं कि मनुष्य से देवता करत न लागी वार, यानी समय नहीं लगता मनुष्य को देवता बनाने का, तो कौन बनाता होगा, कितना ऊंचा ज्ञान होगा जिससे मनुष्य से देवता बने, पर बनाने वाला कौन, ये तो समझते नहीं। परंतु मनुष्यों की बुद्धि चलती नहीं, जरूर वो देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। तब तो लिखते हैं ना कि मनुष्य से देवता बने, वो देवता धर्म था प्राय लोप हो गया, फिर लिखते हैं कि मनुष्य से देवता बने। देवताएं सतयुग में थे, उनको जरूर भगवान ने संगम पर रचा होगा, कैसे रचा ये तो कोई नहीं जानते। कैसे रचा, कोई मुख से नहीं ब्राह्मण पैदा हुए, शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुख से ज्ञान दिया, जिससे मुख की रचना बनी। तो बाबा कहते ये नहीं जानते कैसे रचा ब्राह्मण, गुरु नानक ने भी परमात्मा की महिमा गाई हुई है, सारा ग्रंथ शिव बाबा की महिमा है, ज्योति स्वरूप परमात्मा की महिमा है, उन जैसी महिमा कोई ने नहीं गाई है, किसी धर्म पिता ने भी ऐसी महिमा नहीं गाई जितनी गुरु नानक ने वो ग्रंथ में उस परम आत्मा की महिमा गाई है। इसीलिए ग्रंथ को, गुरु ग्रंथ साहिब को भारत में पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब को। गुरु नानक का तो कलयुग में अवतार होता है, अभी 550 साल ही हुआ है गुरु नानक को आए, वो है धर्म स्थापक गुरु नानक। राजाई तो पीछे हुई है, सिखों की राजाई तो पीछे हुई है, बाप ने तो ये देवी देवता धर्म स्थापन किया है। वास्तव में नई दुनिया, बाबा कहते ब्राह्मणों की ही कहें, क्योंकि अभी हम ब्राह्मण बने, हमारे लिए जैसे ये नई दुनिया है, सत्युग तो आएगा ही, पुरानी दुनिया अभी हमारे लिए खत्म हुई, अभी जैसे नई दुनिया, ब्राह्मणों की कहें, चोटी भल ब्राह्मणों की दिखाते हैं, परंतु राजधानी तो देवी देवताओं से शुरू होती है, ब्राह्मणों से राजधानी नहीं शुरू होती है। ब्राह्मण शिव बाबा रचते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते, पर राजधानी तो देवताओं की, फिर देवताओं से शुरू होती है। तुम ब्राह्मण रचे हुए हो, तुम्हारी राजधानी नहीं है, ब्राह्मणों की कोई राजधानी नहीं है, तुम अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो। बड़ी वंडरफुल बातें हैं, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, तो पहले पहले अपने को मालूम हुआ तो अपने द्वारा दूसरों को मालूम होता है। पहले पहले तो शिव बाबा के द्वारा ब्रह्मा बाबा ने ही समझा, फिर अपनों द्वारा दूसरों को मालूम होता है, हम भी समझ करके फिर दूसरों को समझाते हैं। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ब्रह्मा को भी अभी बाप द्वारा मालूम पड़ता है। एक को बताया ब्रह्मा को बताया, तो बच्चों को भी बताना होता है। पहले शिव बाबा ने एक को बताया, उनको साक्षात्कार कराया, तुम ये बनते हो, तो बाबा कहते एक को बताया तो बच्चों को भी बताना होता है, उनके तन द्वारा तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। ये है अनुभव की बातें। शास्त्रों से तो कोई कुछ भी समझ न सके, बाप कहते हैं सारे कल्प में एक ही बार मैं ऐसे ही आकर के समझाता हूँ, और अनेक धर्मों का विनाश एक धर्म की स्थापना कराता हूँ। ये 5000 वर्ष का खेल है। तुम बच्चे जानते हो हमने 84 जन्म लिए हैं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं। अब ब्रह्मा और विष्णु ये किसके बच्चे हैं? विष्णु की नाभि से ब्रह्मा तो दिखाते, लेकिन विष्णु और ब्रह्मा ये किसके बच्चे हैं? तो दोनों बच्चे ठहरे, ब्रह्मा और विष्णु दोनों बच्चे किसके ठहरे? शिव के। तो दोनों बच्चे ठहरे शिव के, ब्रह्मा और विष्णु, वो है रचयिता और वो है रचना, ब्रह्मा विष्णु रचना और शिव है रचयिता। इन बातों को कोई समझ न सके, बिल्कुल नई बात है। बाबा भी कहते हैं ये नई बातें हैं, कोई शास्त्रों में ये बातें हो न सके, तो ज्ञान का सागर बाप है, वो ही गीता का भगवान है। भक्ति मार्ग में शिव जयंती भी मनाते हैं, अब सत्युग त्रेता में तो शिव जयंती नहीं मनाते, कोई नहीं मनाएगा शिव जयंती सत्युग त्रेता में, तो जरूर संगम पर ही आते होंगे, सत्युग त्रेता में नहीं आते, वहां कोई शिव जयंती भी नहीं मनाते, जरूर संगम पर ही आते होंगे। ये बातें तुम समझते जाते हो और फिर समझ करके फिर समझाते रहते हो। जो समझाने वाले बाप की महिमा है वो बच्चों की होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है, जो समझाने वाला ज्ञान देने वाला बाप की महिमा है, वो बच्चों को समझाते हैं तो बच्चों की भी वही महिमा होनी चाहिए। तुमको भी मास्टर ज्ञान का सागर बनना है, प्रेम का सागर, सुख का सागर यहाँ बनना है। सतयुग में ये महिमा नहीं होगी हमारी, मास्टर ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर यहाँ बनना है। किसको दुख नहीं देना है, बहुत मीठा बनना है। तुम जो कड़वे एकदम जहर मिसल थे, पांच विकारों के वशीभूत थे, तो जैसे हाँ बाबा कहते हैं एकदम कड़वे जहर मिसल थे, सो तुम वॉइसलेस ब्राह्मण बन रहे हो, ईश्वर की संतान बन रहे हो, विशेष से वॉइसलेस देवता बन रहे हो, विशेष से वॉइसलेस देवता बन रहे हो। आधा कल्प तुम पतित बनते बनते क्या बन गए हो, आधा कल्प तुम पतित बनते बनते अब बिल्कुल जर्जरी भूत अवस्था को पाए हुए हो। सड़े हुए कपड़ों को क्या करना पड़ता है, धोबी क्या करता है, सड़े हुए कपड़ों को सटका लगाने से फटकर चीर चीर भी हो जाते हैं। अब बहुत सड़े हुए हैं, बहुत मैले हैं, पर सटका तो लगाना पड़ता है ना, तो सटका लगाते हैं तो चीर चीर हो जाते हैं, फट जाते हैं। यहाँ भी ज्ञान के सटके लगाओ तो पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। किसको डायरेक्ट कहो कि तुमने ये गलती की है, अब तुमको हाँ ये तुमको तुमने ये किया है, तो उसको तो वो तो है ही सड़ा हुआ कपड़ा, तो जैसे उसको सटका लगा तो वो चीर चीर हो जाएगा, तो पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। कोई कपड़ा ऐसा मैला है जो साफ करने में बहुत टाइम लगता है, फिर वहां भी हल्का पद मिल जाता है, साफ ही नहीं होता है, इतना मैला है, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही उसकी फिर प्रारब्ध बनेगी, वहां भी कम पद मिलेगा। बाबा धोबी है, तुम भी साथ में मददगार हो, सब धोबी हो, ऐसे नहीं केवल जो वो कपड़ा धोता है वही धोबी है, लेकिन बाबा कहते तुम सब धोबी हो, तुम सब धोबी हो, हाँ बाबा धोबी है, तुम भी साथ में मददगार हो। फिर धोबी भी नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत अच्छे कपड़े धो करके ले आते और कोई तो हाँ इतने अच्छे कपड़े नहीं धो पाते हैं, तो कहा कहेंगे ना कैसे हो तुम, देखो कपड़े कैसे धोए हैं। तो धोबी भी नंबरवार होते हैं, तो यहाँ भी नंबरवार है। धोबी अच्छे कपड़े साफ न करे तो कहेंगे ना, बाबा कहते जैसे वो हजाम है, अब हजाम का तो काम ही है बस, जैसे उसको का बाल काटने वाला कहे वैसे वो काटेगा, अपनी बुद्धि तो चलाएगा नहीं ना, वो उसको कहेगा ऐसे काटो ऐसे काटेगा, वो ऐसे काटो ऐसे काटेगा, हजाम तो अपनी बुद्धि नहीं चलाता है। तो धोबी अच्छे कपड़े साफ न करे तो कहेंगे ना ये तो जैसे हजाम है। आजकल कपड़े साफ धुलाने सीखे, हाँ साफ धुलाने सीखे, कोई कई तो इतने अच्छे अच्छे साफ 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 कपड़े पहनते हैं। आगे गांवों में तो बहुत मैले कपड़े धुलाई होते थे, यह हुनर भी बाहर वालों से आया है। हाँ नेहरू जी की बात सुनाते हैं, मुझे याद है नेहरू जी के लिए कहते हैं कि वो शेरवानी पहनता था, लंबी लंबी शेरवानी, लंबा लंबा कोट, शेरवानी कहते उसको, तो उसका जो उसकी जो शेरवानी थी काफी भारी होती थी, तो वो पेरिस में जाती थी धुलाई होने के लिए, भारत में धुलाई नहीं होती थी, पेरिस बताओ, विदेश में जाकर के उसकी शेरवानी धुलती थी। तो बाबा कहते हैं ये हुनर भी बाहर वालों से आया है, इतने साफ कपड़े, बाहर वाले कुछ इज्जत देते हैं, पैसे आदि की मदद करते हैं, जानते हैं, हाँ भारत वालों को जानते हैं, ये बहुत बहुत बड़ी बिरादरी वाले हैं, ये भारत वाले बहुत ऊंचे थे, अभी भारत कितना कंगाल हुआ है तो समझते हैं, फिर मदद करते हैं भारत को, अब नीचे गिरे हैं तो गिरने वालों पर तरस पड़ता है ना, कोई बहुत धनवान था और एकदम दीवाला मार दिया, एकदम गरीब हो गया, तो दूसरे लोगों को तरस पड़ता है ना कि देखो बेचारा इतना धनवान था और अभी क्या हो गया। तो गिरने वालों को तरस पड़ता है ना, तो बाप कहते हैं तुमको भी कितना धनवान बनाया था और माया ने देखो क्या हालत कर दी है, सड़ा हुआ कपड़ा बना दिया, माया ने क्या हालत कर दी है। तुम अभी समझते हो हम विजय माला के थे, फिर 84 जन्म ले क्या जाकर बने हैं, वंडर है ना। तुम समझा सकते हो कि तुम भारतवासी तो स्वर्गवासी थे, भारत ही स्वर्ग था, फिर नीचे गिरते गिरते नर्कवासी भी बनना पड़े। अब बाप कहते हैं बनना पड़े, बन गए नर्कवासी, तो अब बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बन स्वर्गवासी बनो। नर्कवासी बन गए अपवित्र बनकर, अब फिर पवित्र बन स्वर्गवासी बनो। मन मना भव, कैसे बनेंगे स्वर्गवासी, मन मना भव। शिव भगवानो वाच माँ में कम याद करो, याद की यात्रा से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। तो शास्त्रों में लिखा है, अब क्या क्या लिखा है, लिखा है कि श्री कृष्ण ने भगाया, हाँ सत्यभामा को भगाया, उसको भगाया भगाया, फिर क्या किया, फिर पटरानी बनाया, अपने से ही विवाह कराया। पटरानी बनाने क्यों भगाया, पटरानी बनाने। तुम सब पढ़ रहे हो, अभी बाबा कहते कौन बनते हैं पटरानी, इस समय तुम पढ़ रहे हो पटरानी बन रहे हो, श्री कृष्ण की पटरानी बन रहे हो, श्री कृष्ण से संबंध जोड़ रहे हो ना, तो पटरानी बन रहे हो। परंतु इन बातों को कोई समझ नहीं सकते हैं। अब बाप ने आकर बच्चों को समझाया है, बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुमको समझाने आता हूँ। हमने देखा पटरानी किसको कहेंगे, पटरानी वो थी जो श्री कृष्ण के बिल्कुल निकट थी, रानियां तो बहुत थी, 108 भी बताते, 16108 बताते, लेकिन 8 थी मुख्य पटरानियां जो बिल्कुल श्री कृष्ण के नजदीक थी, तो वो पटरानी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अब बाप ने आकर बच्चों को समझाया है, बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुमको समझाने आता हूँ। तो पहले तो भगवान एक है ये सिद्ध कर फिर बताओ गीता का भगवान कौन, राजयोग किसने सिखाया। भगवान ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं और विनाश, हाँ पहले स्थापना करते हैं फिर विनाश होता है फिर पालना कराते हैं, भगवान विनाश नहीं कराते हैं, वो तो ड्रामा अनुसार होता है, फिर पालना कराते हैं। ये जो ब्राह्मण है वही फिर देवता बनते हैं। ये बातें भी समझ में उनों को आएगी, किनको आएगी, जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही फिर देवता बनते हैं। ये बातें भी समझ में उनको आएगी जिन्होंने कल्प पहले समझा है। सेकंड बाय सेकंड जो हुआ इस समय तक समझेंगे, कल्प पहले जैसे समझा था वैसे इस कल्प में भी सेकंड बाय सेकंड वैसे ही समझेंगे। ड्रामा में ये तुम्हें बहुत, ड्रामा में तुम्हें बहुत पुरुषार्थ करना है, ये तो बच्चे समझते हैं, अभी हमारी वो अवस्था हुई नहीं है जो बाबा चाहते हैं, जो हमारी अंत की है होनी चाहिए वो अभी तक हुई नहीं है, टाइम लगेगा। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर क्या हो जाए, कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर सब नंबर वन पास हो जाए, फिर तो लड़ाई लग जाए, अभी तक नम पास नहीं हुए हैं इसलिए लड़ाई भी बीच में रुक जाती है, फिर सब नंबर वन पास हो जाए फिर तो लड़ाई भी लग जाए, आपस में खिटपिट तो चलती रहती है, खिटपिट तो चली रही है। तुम जानते हो जहां तक जहां तहां देखो लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं, अब हथियार है तो क्या करेंगे, बाबा कहते रखने लिए थोड़ी है, समझते हमको लड़ना ही है। तो बाबा कहते जहां तहां देखो लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं, सब तरफ तैयारियां कर रहे हैं, तुमने भी जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वो फिर इन आंखों से देखना है। विनाश का साक्षात्कार भी किया है वो फिर इन आंखों से देखना है। विनाश का भी साक्षात्कार जो देखा साक्षात्कार में वो इन आंखों से भी देखना है। फिर स्थापना का साक्षात्कार किया है वो भी फिर प्रैक्टिकल में राजाई देखेंगे, जो साक्षात्कार में किया सब देखेंगे, पहले विनाश भी देखेंगे फिर प्रैक्टिकल में जो राजाई की है बाबा कहते वो भी सतयुग में जाके देखेंगे। तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, ये तो पुराना तन है, योग से आत्मा पवित्र बन जाएगी फिर ये पुराना शरीर भी छोड़ना है। 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है फिर जरूर सबको नए शरीर मिलेंगे। हाँ नए शरीर मिलेंगे, ये भी समझने की बहुत सहज बातें हैं, समझा भी सकते हैं। कलयुग के बाद सतयुग जरूर होगा, अनेक धर्मों का विनाश भी जरूर होगा, फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना अर्थ बाप को आना पड़े। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, किस लिए ब्राह्मण बने हो, देवता बनने के लिए, दूसरे कोई हो न सके। हाँ देवताएं दूसरे कोई नहीं होंगे, जो ब्राह्मण बने हैं वही देवता बनेंगे। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं, शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। शिव जयंती माना ही, अब शिव जयंती का मतलब क्या है, बाबा शिव बाबा से हम वर्षा ले रहे हैं, वो शिव बाबा वर्षा दे रहे हैं, तो शिव जयंती माना ही भारत को वर्षा मिला है। हाँ, भारत को वर्षा मिला है, शिव आया है भारत में और बच्चों को वर्षा दिया है, तो भारत को वर्षा मिला, इसको कहेंगे शिव जयंती। शिव बाबा आया, क्या आकर के किया, इस्लामी बोधी ने तो आकर के अपना धर्म स्थापन किया, बाप ने आकर क्या किया। शिव जयंती तो मनाते कि शिव आया, शिव का अवतरण हुआ, पर शिव ने आकर किया क्या, तो और धर्म पिताओं का तो बताते उन्होंने अपना धर्म स्थापन किया, तो बाप ने आकर के क्या किया, जरूर स्वर्ग की स्थापना की। कैसे स्थापना की, कैसे स्थापना होती है सो तुम अभी जानते हो, हो रही है ना स्थापना, यही तो स्थापना हो रही है तो तुम जानते हो। फिर सतयुग में ये सब बातें भूल जाएंगे। हाँ याद होगा हम ऐसी सभा में बैठे थे और ऐसे भगवान के माँ वाक्य सुनते थे, कुछ भी याद नहीं रहेगा सतयुग में। फिर सतयुग में ये सब बातें भूल जाएंगे, ये भी समझते हो 21 जन्मों का वर्षा अभी हम ले रहे हैं, ये ड्रामा में नूंद है, भल वहाँ समझेंगे ये बाप है ये बच्चे हैं, लौकिक पिता लौकिक बच्चे ये बातें तो समझेंगे। बच्चों को वर्षा मिलता है, लगेगा भाई पिता से बच्चे को वर्षा मिला, महाराजा महारानी ने अपने बच्चे को और बहू को कोरोनेशन करके गद्दी पर बिठाया, लगेगा माँ बाप ने दिया बच्चे को वर्षा, लेकिन वो बच्चे को वर्षा जो मिला वो माँ बाप का नहीं है, किसका वर्षा दिया हुआ है, शिव बाबा का, इस समय का वो वर्षा है, लेकिन लगेगा ऐसे जैसे माँ बाप ने बच्चे को गद्दी पर बिठाया और वर्षा दिया। तो बाबा कहते हैं भल वहाँ समझेंगे ये बाप है ये बच्चा है और बच्चे को वर्षा मिलता है, परंतु ये प्रारब्ध है अभी की। वो बच्चा भी क्यों बना, क्योंकि उसको यहाँ से जो पुरुषार्थ किया उसकी प्रारब्ध है, तो परंतु ये प्रारब्ध है अभी की। सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए तुम वर्षा अभी पा रहे हो, 84 जन्म तो लेने ही हैं, सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में आएंगे, ये अच्छी रीति याद करने से फिर खुशी में भी रहेंगे। समझाने में बड़ी मेहनत लगती है, जब समझ जाते हैं तो उनको बड़ी खुशी होती है। जो सचमुच ये ज्ञान को पूरा समझ जाए, कितनी खुशी उनको होगी, खुशी में रहेंगे, खुशी होती है। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं वो फिर बहुतों को समझाने लगते हैं, खुशी भी रहेगी, फिर लगेगा कि जो मैंने समझा है मैं दूसरों को समझाऊं, तो फिर बहुतों को समझाते रहते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं। ये है बेहद की पढ़ाई। वर्षा भी बेहद का मिलता है, फिर इसमें त्याग भी बेहद का है। वर्षा भी बेहद का है तो फिर त्याग भी बेहद का है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सारी दुनिया का त्याग करना है, क्योंकि तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब नई दुनिया में जाना है, इसीलिए बेहद का संन्यास कराते हैं। सन्यासियों का तो है हद का संन्यास, और उनका है जो हद का संन्यास है, बाबा कहते हैं उनका है हठ योग। इसमें हठ की तो बात ही नहीं है, यहाँ हठ की बात नहीं है, क्योंकि ये है राजयोग। ये तो पढ़ाई है, पाठशाला में पढ़ना है मनुष्य से देवता बनने के लिए। तो शिव भगवानो वाच, ये श्री कृष्ण तो हो न सके, शिव भगवानो वाच है श्री कृष्ण ने, उनको तो श्री कृष्ण को शिव भगवानो वाच, श्री कृष्ण हो न सके, उनको हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे। हेवन रचने वाला नहीं है श्री कृष्ण, तो हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे उनको, क्या कहेंगे? श्री कृष्ण को हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे तो क्या टाइटल देंगे? हेवनली प्रिंस, राजकुमार है, हेवन का राजकुमार है, हेवनली प्रिंस कहेंगे। तो मीठे मीठे, तो ये कितनी मीठी मीठी बातें समझने और धारण करने की है। दैवी लक्षण भी चाहिए, इतनी ऊंची मीठी मीठी बातें बाबा सुनाते हैं तो उसके लिए दैवी लक्षण भी चाहिए। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर नहीं लगना चाहिए, बहुत अंडरलाइन, सुनी सुनाई बातों पर नहीं लगना चाहिए। व्यास की लिखी हुई बातों पर लगते लगते ही तो बुरी गति हुई है। कितनी कहानियां बैठ के बनाई है, कहते भाई ये किसने लिखा? व्यास भगवान ने, व्यास। तो बाबा कहते कहानियां लिखते लिखते सब झूठी झूठी कहानियां, तो बाबा कहते ये जैसे क्या दुर्गति कर दी है। तो सिवाय ज्ञान के और कुछ सुनाते हैं तो समझो ये हमारा दुश्मन है। तो सुनी सुनाई बातें, अरे तुमको पता है ये ऐसे हुआ, फिर तुमको किसने बताया? फलाने ने बताया। फिर फलाने से पूछो ये कैसे तुम कह रहे हो, किसने बताया? फलाने ने बताया। आखिर तो बात तो कुछ होती नहीं है, तो आटे का गोवाटा बाबा कहते कर देते। तो बाबा कहते अगर तुमको कोई ऐसी सुनी सुनाई बात सुनावे तो समझो वो तुम्हारा दुश्मन है, दुर्गति में ले जाते हैं। कभी भी पर मत पर नहीं लगना चाहिए, बहुत बड़ी शिक्षा है, कभी भी पर मत पर नहीं लगना चाहिए। मन मत पर मत पर चला तो क्या हुआ? ये मरा, मरा। बाप समझाते रहते हैं, झूठी बातें बोलने वाले तो बहुत है, तुमको बाप से ही सुनना है। Hear no evil, see no evil, talk no evil। बाप दादा आए ही हैं मनुष्य से देवता बनाने, तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। अंतिम वाक्य क्या करना चाहिए? बाप दादा आए हैं मनुष्य को देवता बनाने, तो क्या करना चाहिए? उनकी श्रीमत पर ही चलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सा हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, यहाँ बाप समान सुख का सागर प्रेम का सागर बनना है, सर्व गुण धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी बात, सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना है, पर मत पर नहीं चलना है। Hear no evil, see no evil, talk no evil। वरदान, मैंपन के बोझ को समाप्त कर, मैं जो है ना बोझ बन जाता है, मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। जब किसी भी प्रकार का मैंपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है, मैं तो बोझ सिर पर आ जाता है। लेकिन जब बाप ऑफर करते हैं कि सब बोझ मुझे दे दो, आप सिर्फ क्या करो, बाबा को सारा बोझ दे दो, तो आप सिर्फ क्या करो, नाचो उड़ो, नाचो उड़ो। फिर ये क्वेश्चन क्यों कि सर्विस कैसे होगी, भाषण कैसे करेंगे, आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ। दिल शिकस्त नहीं बनो तो बाप दादा सब कुछ स्वतः करा देंगे। बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे। स्लोगन, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। अव्यक्तिशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। कैसी भी कड़ी परिस्थिति हो लेकिन खेल समझने से कड़ी समस्या भी हल्की बन जाती है। कई बच्चों में हिम्मत तो है, इसीलिए कोई भी बात होती है तो कहते हैं हाँ करेंगे सोचेंगे, हाँ हिम्मत है तो इसलिए कहते हैं ना करेंगे सोचेंगे। हिम्मत तो है लेकिन फेथ नहीं है, सोचेंगे करेंगे हिम्मत है, हाँ सोचते हैं कर सकते हैं, परंतु फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है कि हम कर सकेंगे या नहीं। फेथफुल के बोल ऐसे नहीं होते हैं, जो अंदर में फेथ है विश्वास है कि कर सकेंगे तो फिर वो ऐसे नहीं बोलेंगे सोचेंगे। फेथफुल के बोल ऐसे नहीं होते, फेथफुल का अर्थ ही है मन वचन कर्म, हर बात में निश्चय बुद्धि। उनके मुख से कभी हिम्मतहीन बनाने वाले शब्द नहीं निकल सकते। हाँ, हिम्मतहीन बनाने वाले शब्द नहीं निकल सकते। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अभी बाबा को भोग तो लगेगा, हम सब मिलकर ही भोग लगाएंगे। हाँ, मिलकर ही भोग लगाएंगे, सभी भोग लगाएंगे ना, सभी जाएंगे वतन में, जो जाएंगे हाथ उठाओ, सब शिष्य हमेशा पूछते हैं, हाँ सबको जाना है, इसलिए सब मिलकर भोग लगाएंगे। और जैसे आप सब ने पढ़ा भी होगा व्हाट्सएप पर पढ़ा भी होगा कि हमारी अति स्नेही अति मीठी गीता बहन जी, जिन्होंने कल सुबह 2 बजे अपना देह त्याग किया, तो उनका तो नीचे ट्रॉमा हॉस्पिटल में उन्होंने शरीर छोड़ा, और फिर उसके बाद तुरंत बाद उनके बॉडी को यहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल में ले आए, तो आज उनका अंतिम संस्कार होगा ग्लोबल हॉस्पिटल से यहाँ उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा पांडव भवन में लगभग 10 बजे के अंदर। तो 10 बजे के अंदर उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जाएगा, चार धाम की यात्रा कराएंगे और फिर यहाँ से म्यूजियम पहले ज्ञान सरोवर ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ भी उन्होंने बहुत सेवा की, और फिर म्यूजियम और फिर नीचे ले जाएंगे शांतिवन, क्योंकि शांतिवन में ही उनकी सेवा थी, बहुत दिल से सेवा की उन्होंने, अंत तक सेवा की अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा। अंतिम दिन भी क्लास कराया, सब कुछ किया और अचानक हुआ, तो इसीलिए शांतिवन ले जाएंगे। और शांतिवन वहाँ जो मुक्ति धाम है, शांतिवन के पास वहाँ ही अंतिम संस्कार होगा, लेकिन यह 10 बजे के अंदर हम उनके पार्थिव देह को लाएंगे। तो अभी भोग के बाद संदेश तो नहीं होगा, शशि बहन आज नहीं है, लेकिन हम सब मिलकर भोग लगाएंगे और अमृत तो लेंगे ही, और उसके बाद जल्दी नाश्ता करेंगे और 10 बजे के अंदर उनके पार्थिव देह को यहाँ लाएंगे। और डबल फॉरेनर्स प्रोग्राम फॉर ऑल ऑफ यू, दिस मॉर्निंग 10 to 10:30 मेडिटेशन, 10:30 to 11:30 कॉन्वर्सेशन बिटवीन सिस्टर रजनी एंड सिस्टर भावना ऑन द टॉपिक इन्वेस्टिंग माई अटेनमेंट्स इन टू द फ्यूचर, इन्वेस्टिंग माई अटेनमेंट्स इन टू द फ्यूचर इन द हार्मनी हॉल ऑफ ज्ञान सरोवर 10:30 to 11:30। And then 4:30 to 4:30 buses will leave for Pandav Bhavan from Gyan Sarovar. They will have tea in Gyan Sarovar and come to Pandav Bhavan. And then gather at the main gate of Pandav Bhavan for Baba's Rock. So those who are in Pandav Bhavan, if you like to go to Baba's Rock, please gather at the gate by 5 o'clock. Before 5:15, and all of you will go to Baba's Rock, and then those who are from Gyan Sarovar, they will come back and then go back to Gyan Sarovar for dinner. This is the program for double foreigners. Om Shanti. Abhi hum sab Baba ki yaad mein baithenge aur sab milkar Baba ko bhog lagayenge. और फिर सबको अमृत मिलेगा, यहाँ चार लाइनों में अमृत मिलेगा। बीच नहीं, ठीक है, चलेगा चलेगा। डबल फॉरेनर्स विल कम दिस साइड एंड और भाई वहाँ होंगे, डबल विदेशी यहाँ होंगे और दो बहनों की लाइन यहाँ लगेगी।
तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
Peace.